हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस महायज्ञ में आप सबका स्वागत है। परम सौभाग्य है आप सबका कि आप सब भगवान के विषय में सुन रहे हो। आजकल इस संसार में सब कोई सुनते रहते हैं। देखो, जब से हम संसार में आए ना, सुनते रहे। कभी देश के बारे में सुनते हैं, कभी मुल्क में क्या चल रहा है उसके बारे में सुनते हैं, कभी किसी की निंदाएं सुनते हैं, किसी की तारीफें सुनते हैं, बस सुनते ही रहे हैं। लेकिन वास्तव में सुनने के योग्य जो है वो आज आप सुन रहे हो। और भगवान के विषय में पहले हमने इस चीज को साबित किया कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है। उसके बाद में भगवान निराकार है, साकार है। तो भगवान पूर्ण है, वो निराकार भी है, साकार भी है, और परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी विराजमान है। और भगवान का मूल रूप कौन सा है, जो रियल जिससे निराकार साकार परमात्मा ये सब निकले हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण साक्षात, जो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। इस चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया। उसके बाद भगवान की कितनी योग्यताएं, भगवान के अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए भगवान बनने के लिए, उसके विषय में हम बात कर रहे थे। तो पहली क्वालिटी भगवान की परम नियंता होना चाहिए, यानी परम कंट्रोलर। तो साबित किया कौन कहता है, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण, सिर्फ कृष्ण ही अंदर वो योग्यता है, क्योंकि वो परम ईश्वर है। तो फिर ब्रह्मा जी का, उसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु का एकलो ईश्वर कृष्ण बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और प्रूफ दिए। उसके बाद सभी वस्तुओं का स्रोत, के सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, उनका स्टार्ट क्या है, भगवान श्री कृष्ण। तो वही ब्रह्मा जी ने क्या बताया, सर्व कारण कारणम, भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। और भगवान स्वयं कहते हैं अहम बीज प्रदपिता, मैं ही समस्त जीवों को बीज प्रदान करता हूँ, और तस्मिन गर्भम ददामि, हम जितनी प्रकृति है उसके अंदर गर्भ में उत्पन्न करता हूँ। उसके बाद भगवान की तीसरी योग्यता के भगवान पूर्ण होने चाहिए। तो उपनिषद प्रमाण पूर्णमद पूर्णमिदम, और भगवान जो है वो पूर्ण इसलिए होने चाहिए कि वो निराकार भी होने चाहिए, साकार भी होने चाहिए, परमात्मा भी होने चाहिए। यदि वो अपूर्ण है तो उन्हें भगवान कहलाने कोई उनके अंदर योग्यता नहीं है, क्योंकि भगवान के अंदर तो कम्प्लीट होना चाहिए ना, वो साकार भी, उनका रूप भी होना चाहिए, उनके हाथ पांव देखने के लिए, क्योंकि यदि साकार न होते तो उससे प्रेम कैसे करते, है ना। उसके बाद चौथा प्रमाण कि भगवान सब जगह हर टाइम पर सब जगह व्याप्त हो, यानी कि ब्रह्म ही भगवान ऐसा है, भगवान का निराकार रूप ही ऐसा है जो हर जगह पर व्याप्त हो। तो भगवान को निराकार भी होना चाहिए। ये सब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया। उसके बाद हम उस डेफिनेशन पे आए थे जो पराशर मुनि, जो वेद व्यास जी के पिता थे, उन्होंने जो भगवान के विषय में डेफिनेशन दी कि भगवान के अंदर की कौन कौन सी क्वालिटीज, छह क्वालिटीज होनी चाहिए। ईश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गण। उसमें से सुंदरता, पहले मैंने आपको बताया, जिसके अंदर ये परिपूर्ण मात्रा में यानी कम्प्लीट सुंदर भूत भविष्य वर्तमान में वो केवल कृष्ण हो सकते हैं। उसके बाद बल, कि वो केवल कृष्ण ही हैं जिनके अंदर पूरा का पूरा बल, क्यों, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं 7.11 में बलम बलावताम चाहम, कि बलवान जो भी संसार में तुम्हें नजर आ रहे हैं उनको भी बल किसने दिया है, भगवान कहते हैं मैंने दिया है। बलम बलावताम चाहम, हम का मतलब होता है कृष्ण, कहते हैं मैंने दिया है। उसके बाद परिपूर्ण मात्रा में धन, तो धन की देवी कौन है, लक्ष्मी। और ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उनके चरण को दबाती हैं, तो फिर उनसे ज्यादा धनवान भला कौन हो सकता है। और नंबर चार है परिपूर्ण मात्रा में यश, यानी फेम, चाहे वो जो भी करें तो भगवान को फेम ही मिलता है। भगवान की कभी भी ना ऐसा नहीं होता है कि उनके यश में कोई कार्य करने से उनके यश में कोई कमी हो, और भी बढ़ता है वो जो भी करते हैं, भले वो कुछ भी करते हैं। उसके बाद चौथा है ज्ञान, यानी संपूर्ण मात्रा में जिसके पास ज्ञान है वही भगवान हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास ही संपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वेदेश्य सर्वेश अहमेव वेद्यो, 15.15 में भगवान कहते हैं सब वेदों के अंदर जो लिखा हुआ है उसको जानने का मकसद भी मैं हूँ, वेदों का रचयिता भी मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। और 7.28 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर बताया कि वो कितने ज्ञानी हैं। भगवान कहते हैं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और भविष्य में घटित होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ लेकिन मुझ अकेले कृष्ण को कोई नहीं जानता। इस प्रकार संपूर्ण ज्ञान कृष्ण के साथ है। तत्पश्चात आखिरी योग्यता वैराग्य। देखिए भक्तों, ये सारी क्वालिटीज धन बल और ये ज्ञान इत्यादि किसी के अंदर हो सकती हैं लेकिन संपूर्ण वैराग्य कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा है, वैराग्य का अर्थ होता है अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी क्षण भर में त्याग देना। आप देखिए, गोकुल में कृष्ण से प्रेम करने वाली कितनी गोपियां थी जो कृष्ण से वास्तविक प्रेम करती थी, श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा इत्यादि। परंतु कृष्ण जैसे ही अक्रूर जी आए, कृष्ण तुरंत चले गए। आज के व्यक्ति यदि किसी से या कोई सच्चा प्रेम करता भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है, आज के व्यक्ति जो बोलते हैं ना कि आपसे प्रेम करता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, उसी टाइम उसको थप्पड़ मारना चाहिए कि आप दावा करते हो प्रेम का और आरजू रखते हो मेरे स्पर्श की, या फिर तो फिर ये तो हवस और प्रेम में क्या फर्क है, ये तो लस्ट है। तो यहाँ पर हालांकि कोई भी है ना किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता लेकिन फिर भी अगर उनको बोलते हैं कि भाई आप उनको छोड़ो तो इतनी आसक्ति है। वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं संसार में, तो यही कहेंगे कि भाई नहीं, हम इनसे दूर, आपसे दूर एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते। वास्तव में देखा जाए तो एक संसार, इस संसार में ना सब स्वार्थ के द्वारा, स्वार्थ के कारण ही कोई किसी से प्रेम करता है। वास्तविक प्रेम केवल हो ही नहीं सकता ना इस संसार में, हम किसी से वास्तविक प्रेम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वास्तविक प्रेम जो है वो कृष्ण से ही किया जा सकता है। निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, हर वो इच्छा जिसके अंदर तुम्हारी इंद्रिय को तृप्ति मिल रही है, चाहे देख कर, चाहे छू कर, चाहे उसके किसी कार्य से आपको अच्छा लग रहा है, उसको देखना अच्छा लग रहा है, उससे बात करना अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, वो तो तुम्हारी इंद्रियों की ख्वाहिश है, तुम्हें पता ही नहीं है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण को, कृष्ण की अगर तृप्ति के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रेम। तो ये केवल कृष्ण ही है जो अपनी इतनी सारी प्रेमिकाओं को छोड़कर आ गए। वहां भगवान श्री राम का राजतिलक होने वाला था, रात में पता चला कि राजतिलक होगा, तैयारियां हो रही थी, उसी समय राजा बनने वाले थे, लाखों करोड़ों दास दासियां महल में थे, सब कुछ छोड़ के चले गए। सिर्फ ये बोला, उसके माता ने बोला कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, तो फौरन से छोड़ के चले गए, किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं रखी। ये संसार देखो, कितना सारा संसार भगवान ने बनाया है। हम कोई एक चीज भी बनाते ना, छोटी सी कोई अगर ड्रॉ भी करते हैं या कोई डायरी में कुछ लिखते हैं, तो फिर हमें वो कितनी आसक्ति होती है उसके अंदर कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, कहीं ये खराब ना हो जाए। कोई ड्रेस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर कितनी आसक्ति होती है। भगवान ने ये पूरी संसार को बना दिया, इतनी सारी चीजें बनाई इसके अंदर, लेकिन किसी के अंदर कोई आसक्ति नहीं। संपूर्ण वैराग्य, जो जैसा कर रहा है, इतने सारे बच्चे भगवान ने पैदा किए अपने, लेकिन किसी के अंदर कोई आसक्ति नहीं। ये वैराग्य का गुण केवल कृष्ण के अंदर ही हो सकता है और इसी को ही कृष्ण कह सकते, इसी को ही भगवान कहा जा सकता है, और भगवान केवल कृष्ण ही है। तात्पर्य ये है कि सौंदर्य, यश, ज्ञान, बल और वैराग्य एकमात्र कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि कृष्ण ऊपर की गई समस्त योग्यताओं को पूरा करते हैं। अब भी अगर किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, परंतु अगर आप किसी और के लिए भगवान घोषित कर रहे हो कि ये भगवान भी हो सकता है, तो ये सारे गुण होने चाहिए उसके अंदर और उनका प्रमाण भी होना चाहिए, परंतु प्रमाण शास्त्र से होना चाहिए। अगर शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि भाई वो भगवान है, क्योंकि हमारे शास्त्र लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, ऐसा बताया गया उसमें भागवतम महापुराण में 1.3.28 में, एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर ऐसा स्टेटमेंट किसी भी शास्त्र में किसी और देवी देवता या भगवान के किसी और अवतार के विषय में लिखा हुआ है ना कि बाकी सब भगवान के अंश और कलाएं हैं, कृष्ण ही भगवान है। एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अगर ऐसा स्टेटमेंट कहीं पर मिलता है तो उसको भगवान कह दो, आप कह सकते हो। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, हम पहले भगवद गीता पे बात करेंगे, भगवद गीता प्रमाणिक शास्त्र है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा, मैं ही सबका मालिक हूँ, मैं ही सबका प्रभु हूँ, मैं ही सबको पैदा करने वाला हूँ, इसके अलावा कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो कहते हैं, शिव जी भी कहते हैं, बड़े बड़े सारे लोगों का यही मत है कि भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। ये है शब्द प्रमाण। इस संसार में सबसे बड़ी आराधना भगवान श्री कृष्ण की है। उपनिषद कहता है ब्रह्म यदि कोई है तो वो मात्र कृष्ण है, और सभी शास्त्र के अंत में वेद व्यास जी भागवत लिखते हैं, और भागवतम में साफ क्लियर स्टेटमेंट है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। कृष्ण पूर्ण नियंता है, कृष्ण ही सबके स्वामी, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे प्रश्न, अब देखो, अगर कोई कहता है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई देवता कोई देवी, अगर उसको भगवान कहते हैं तो हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रमाण के साथ आप साबित करो कि वो भगवान है, किसी शास्त्र का आप उदाहरण दो कि वो भगवान है। लेकिन अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि यदि कृष्ण भगवान है तो गणपति दुर्गा सूर्यदेव शिव जी ये सब कौन है? शिव जी को भी कुछ लोग भगवान बोलते हैं, कुछ लोग है ना देवताओं को, अलग अलग देवताओं को भगवान कहते हैं। तो हम आपको अब ये बताएंगे कि बाकी सब क्या हैं, क्योंकि ये हमारे ये जो सनातन धर्म बिगड़ कर हिंदू धर्म बन गया है ना, उसके अंदर करोड़ों भगवान हो गए हैं, अब उनको भी साबित करना पड़ेगा कि वो क्या है। तो कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवता हैं। शास्त्र कहता है बाकी सब देवता हैं, जो हम 33 करोड़ देवताओं को जानते हैं ना। अब ये देवता क्या है? ये देवता भगवान से नीचे हैं और मनुष्य से ऊपर, यानी कि जैसे भगवान ने बताया था ना कि आप अगर सत्वगुण में कार्य करोगे तो ऊपर के लोकों में जाओगे, तो उसमें क्या होता है, यक्ष गंधर्व देवता इस तरह के लोक होते हैं, उसमें आप जाते हो। और कुछ देवता बहुत विशेष हैं, जैसे ब्रह्मा, वो भगवान की नाभि से उत्पन्न होते हैं, तपस्या करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, लेकिन ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर हैं। क्यों? क्योंकि पहले ब्रह्मा जी को क्रिएट करने वाले भगवान हैं। जैसे अब अगर आपको मैं ये ना मिसाल दूं कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है वो किसने बनाई है, तो आप क्या बोलोगे कि ये टेलर ने बनाई है। लेकिन टेलर को इंग्रेडिएंट्स किसने दिए? जो कारखाने में मजदूर कार्य कर रहा है उसने दिए। और कारखाने वाले को इंग्रेडिएंट्स किसने दिए? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्ध, ये चीजों से ही मिलकर बना है। एक आज का साइंसदान अपनी क्षमता से भगवान की कोई चीज उठाए बगैर एक ग्रीन पत्ता भी अपनी लेबोरेटरी में नहीं बना सकता। तो जो ये सारी चीजें हैं वो सब भगवान क्रिएट करते हैं। तो भगवान मेन क्रिएटर हैं। और इसके बाद शिव जी, जैसे ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो क्रिएशन करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, उनको प्रलय का डिपार्टमेंट दिया गया है, वो महाप्रलय करते हैं। देखिए बहुत ही मुश्किल कार्य है कि तबाही करना, हालांकि हम लोग को ईजी लगता है, लेकिन किसी शुद्ध वैष्णव के लिए ये तबाही का काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्वास पात्र, यानी कि जो बहुत ज्यादा जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं ना, उसको भी बहुत ज्यादा कठिन रोल देते हैं। तो शिव जी के विषय में कहा जाता है कि वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हैं उनमें सबसे बढ़कर शिव जी हैं। तो शिव जी जो हैं उनको भगवान ने प्रलय का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, वो प्रलय करते हैं। जब महाप्रलय आता है तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं और बड़े बड़े 8 दिग्गज को अपने त्रिशूल में फंसाते हैं और सृष्टि का नाश करते हैं। जैसे भगवान में और शिव जी में क्या फर्क है, इसको ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। क्षीरम यथा दधि विकारम, इसे बताया कि दही और दूध में जितना अंतर है ना, उतना ही कृष्ण और शिव में है। शिव कृष्ण ही है लेकिन उसके अंदर तमोगुण डाला गया, कृष्ण का अंश है लेकिन क्योंकि तमोगुण की वृद्धि हो गई है, जिस तरह दूध के अंदर अगर हम दही डाल देते तो क्या मतलब अगर उसके अंदर जामुन डाल देते तो दही बन जाता है। उसी तरह से देखो, दूध को दही में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दही को कभी भी हम वापस से दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसको चाहे कुछ भी करें, वापस दूध नहीं बनता। तो भगवान के अंदर, भगवान ने अपने एक अंश के अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा डाल दिया। इसको शिव जी को तमोगुण का देवता कहा जाता है, क्योंकि वो प्रलय करते हैं। तो उनके जरिए क्या होता है, प्रलय होता है, लेकिन शिव जी वापस भगवान। और कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर भगवान ने, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा आया था शुरू में, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया कि भगवान कृष्ण ने या भगवान राम ने शिव जी की पूजा क्यों की। तो भगवान है वो, भगवान अगर अपने भक्त की पूजा करता है, अपने भक्त को मान देता है, ये भगवान का स्वभाव है कि वो अपने भक्त को मान देते हैं। वैष्णव है भगवान, समस्त वैष्णवों को बहुत आदर करते हैं। और अगर देखो, बाप है ना, एक बाप होता है, उसका बेटा होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हालांकि बेटे का फर्ज होता है बाप की सेवा करना, लेकिन बाप का जब दिल करता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसकी सेवा कौन करता है? बाप करता है ना, उसको गोद में उठाता है, उसको लेकर जाता है, उसको अपने हाथों से खिलाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बेटा है वो ही बड़ा है या वो ही उस पूजा के लायक है। वो बाप है, लेकिन उससे प्यार करता है, इसलिए उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। उसी तरह से भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और शिव जी से, वैष्णवों से तो वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए शिव जी को बहुत आदर दिया है उन्होंने। श्री राम के रूप में भी उन्होंने शिव जी की पूजा की थी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो शिव जी, हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, भागवतम में आता है कि सती, जब सती पूछती थी शिव जी से कि मैं तो समझी थी आप भगवान है, लेकिन आप भगवान तो नहीं है। तो शिव जी बोलते, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। तो बोला, लेकिन आपको कैसे खबर पड़ी? बोला, भगवान किसी का ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि ध्यान अगर आप लगा रहे हो, आप अगर तपस्या कर रहे हो, शिव जी कंटिन्यूस तपस्या में होते हैं, कंटिन्यूस समाधि में होते हैं, जप करते हैं, उनके हाथ में जप माला होती है रुद्राक्ष की बनी हुई, वो कंटिन्यूस भगवान का ध्यान लगाते। तो सती उनसे पूछती है कि आप किसका ध्यान लगा रहे हो? तो शिव जी बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का ध्यान लगा रहा हूँ, क्योंकि वही मेरे आराध्य हैं। वो स्वयं कह रहे हैं कि भगवान मेरे आराध्य हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो भगवान है? इसके बाद सूर्य देवता, सूर्य देवता को प्रकाश करने का डिपार्टमेंट सौंपा गया। उसके बाद चंद्र देवता को शीतलता देने का डिपार्टमेंट, और जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी है ना सब्जियां हैं, उनके अंदर पावर डालने का, उसको इनके अंदर ना डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया, और उनको ये ड्यूटी दी गई। भगवान ने इन सारे देवी देवताओं को ये ड्यूटी दी है कि आपको ये करना है। भगवान भगवान है, जिस तरह राजा होता है उनके बहुत सारे करोड़ों करोड़ों सेवक होते हैं, उसी तरह भगवान के भी बहुत सारे सेवक हैं, और भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य करते हैं। इसके बाद गणपति जी, गणपति जी को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, गणेश जो है वो कौन है? वो एक किसी का नाम नहीं है, ये पोस्ट है। गणेश की पोस्ट पर जब कोई आता है, गणेश का काम क्या है? विघ्न देना। हम बोलते हैं ना विघ्न हर्ता, लेकिन विघ्न देना। और जब हम इसको प्रसन्न करते हैं, पहले प्रथम पूजा के योग्य उनको बताया गया, तो वो क्या है? वो ऐसे देवता हैं जो कि विघ्नों को विघ्न देते हैं। लेकिन अगर हम शुरू शुरू में उनकी गणेश पूजा कर देते हैं तो क्या होता है, विघ्न नहीं आता। जैसे शादी होती है ना, फिर गणेश स्थापना होती है, ताकि हम जो शादी का कार्य कर रहे हैं उसमें, विवाह में कोई भी विघ्न ना आए। अब देखो, ये शुरू से आता है। जब शिव जी की शादी हुई थी ना, तभी भी ये रूल चल रहा था। अब शिव जी के टाइम पर, शिव जी की शादी जब पार्वती मैया से हुई थी, अभी तक तो गणपति नहीं आए थे, लेकिन उस टाइम पर भी गणेश पूजा हुई थी, गणेश स्थापना हुई थी। तो इसका मतलब यही हुआ कि गणेश एक पोस्ट है, वो कभी कोई गणेश बनता है, कभी कोई गणेश बनता है। और फिर गणेश भगवान जी, भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। आपको पता है भागवतम किसने लिखा है? जो रियल भागवतम जो है वो गणेश जी ने लिखा है। बद्री का आश्रम में भागवतम बोलने वाले थे वेद व्यास जी, वो बोल रहे थे, और एडिटिंग करने वाले थे जैमिनी ऋषि, और लिखने वाले थे गणेश जी। क्योंकि वेद व्यास जी को समाधि में भागवतम लिखना था, मतलब समाधि की अवस्था में, ये वेद व्यास जी की समाधि की स्थिति में, यानी कि वो समाधि में सारी लीलाएं को देख रहे थे और भगवान की लीलाओं को बोल रहे थे, और गणपति जी लिख रहे थे। उन्हें पता चला, अब उनको है ना ऐसा चाहिए था लिखने वाला कि मैं लीलाएं बोलता रहूं, और कोई एक्सपर्ट राइटर चाहिए था उनको। तो उन्होंने है ना गणेश जी को बोला कि आप लिखने में बहुत एक्सपर्ट हो, मैं शास्त्र बोलूंगा मतलब समाधि में बैठ के बोलता रहूंगा और आपको लिखना पड़ेगा। तो गणपति जी ने कहा कि मैं लिखूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं रुकूंगा नहीं, अगर आप बोलते बोलते रुक गए तो मैं चला जाऊंगा, आधा छोड़ के चला जाऊंगा। फिर वेदव्यास जी ने कहा ठीक है लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो भी श्लोक बोलूंगा उसे आप पहले समझोगे, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझोगे उसके बाद लिखोगे, ऐसे नहीं बस बगैर सच्चे समझे लिख लोगे। तो एग्रीमेंट साइन हुआ और लिखने लगे। लिखते लिखते वो बोले जा रहे थे और लिखते जा रहे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि उनको जब सोचना होता था ना वेदव्यास जी को कि भाई इसके बारे में आगे मुझे सोचना है, तो क्या करते थे, कोई बहुत ही मुश्किल श्लोक बोल देते थे। हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई ना, मुश्किल श्लोक बीच बीच में बोले तो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तरीके से तात्पर्य में हर चीज समझा दिए। बरन फिर गणपति जी को सोचना पड़ता था कि ये कैसे है, जब तक वो सोचते थे तब तक वो आगे श्लोकों का निर्माण करते थे। तो लिखते लिखते क्या हुआ कि गणपति जी जिस पेन से लिख रहे थे उसकी इंक खत्म हो गई, और शर्त क्या थी कि रुकना नहीं है। और उनको कृष्ण कथा लिखने में इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि अब वो उसको बंद करके पेन लेने के लिए किसी स्टेशनरी शॉप में नहीं गए, अपना दांत ही तोड़ दिया। और गणपति जी के, आपने देखा होगा गणपति जी का एक दांत टूटा हुआ है ना, तो इसीलिए उन्होंने तोड़ा था। और गणेश जी ने अपने दांत से जो भागवतम लिखा है वो आज भी बद्री का आश्रम में है। यदि आपको कभी भगवान ने सौभाग्य दिया बद्री का आश्रम में जाने का तो वहां पर आप देख सकते हो। और ये गणेश जो है वो भगवान के परम भक्त है, इसलिए आपने शायद गणेश जी की आरती सुनी होगी, उसके आखिर में आता है जय देव ये वाली आरती सुनिए ना, जय देव जय मंगल मूर्ति। आरती के आखिर में एक श्लोक आता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और एक श्लोक भी आता है जब निमि महाराज से राजा जनक ने सनातन धर्म के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ऋषभ के 9 पुत्र जो है उनमें से एक पुत्र जो है उन्होंने उत्तर दिया कि सनातन धर्म केवल एक श्लोक पर टिका हुआ है, और वो श्लोक क्या है। आपने गणपति जी की आरती तो सुनी होगी ना सबने, काये नवाचा मनस इंद्रिये वा बुद्ध्यात्मानं श्रुतवस्य वा करोति यत्यत् सफलं परोस्मै नारायणेति समर्पयामि सदैव जय देव। सुना ना, तो ये श्लोक भागवतम का श्लोक है। क्या है, काये नवाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मवानं श्रुतयस्वभावा करोति यत्यत् सफलं परस्मे नारायणेति समर्पयामि। इसका अर्थ ये है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, काया से वाणी से मन से इंद्रिय से बुद्ध्यात्ममानं बुद्धि से, करोति यत्यत् आप जो कुछ भी करते हो, सकलं परस्मै वो जो कुछ भी आप कर रहे हो, नारायणेति समर्पयामि वो भगवान श्री नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो गणपति साफ कहते हैं, गणपति के प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आज हम शास्त्र की बात को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जो जो जहां जहां जा रहे हैं, जिस जिस देवता के पास जा रहे हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जाते हैं। और आज क्या लोग किस तरह से धर्म को कितना गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, रखते हैं अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं और वहां पर फिल्मी गाने चलाते हैं, डांस होता है बेहुदा तरीके का, कोई लोग झूलेलाल का है ना प्रोग्राम करते हैं, वहां पर डांस दाना पर दाना लगाते हैं, बिजा तीर बिजा लगाते हैं। मतलब इतना मैंने सुना है, इतना घिन आती है अब उन लोगों के साथ जो अपने धर्म का इस तरह से प्रचार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने धर्म को धर्म नहीं बल्कि एक गलत तरीके से इतना उसका प्रचार कर रहे हैं। और आगे है, दुर्गा, ये बहुत ही विशेष देवता है। दुर्गा जी को भगवान ने इस संसार में दुख देने के लिए प्रकट किया है। ये दुर्गा जी जो है वो जेलर हैं, जैसे ये संसार एक जेल है मैंने बताया ना, और ये जेलर हैं। तो संसार में जो भी आते हैं उनको दुख देने की जो है ना डिपार्टमेंट है ना वो दुर्गा जी को दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि भगवान हम लोगों को दुखी क्यों करना चाहते हैं। दुर्गा है ना, माया है, माया हमें दुखी करती है। तो वास्तव में इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जब तक जीव इस भौतिक जगत में दुखी नहीं होगा तो भगवान के परम धाम में नहीं आएगा। ताकि हम लोग अगर दुखी नहीं होंगे तो फिर हम इस संसार में खुश रहने, हर सुख में कोई ना कोई दुख सम्मिलित है। अगर जैसे इस संसार में आप कुछ भी, जैसे शादी करने में सुख होता है लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे दुख, बच्चा आप प्राप्त करते हो, बच्चा पैदा करने में एक खुशी है कि भाई हमारे पास बच्चा है, लेकिन दिन रोजाना कोई ना कोई उसकी वजह से हमें दुख मिलता है। घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कारोबार हो, हर चीज में हमें दुख मिल रहा होता है। ये दुख जो कौन दे रहा है? दुर्गा देवी दे रही है। ताकि भगवान ने, उनका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जब तक जीव इस जगत में दुखी नहीं होगा मेरे धाम आने के बारे में नहीं सोचेगा। इसीलिए भगवान ने कहा दुख कालायम अशाश्वतम। इसलिए दुर्गा जी को कहते कि आप यहाँ पर सबको दुख का अनुभव कराओ ताकि लोग भजन भक्ति करें और मेरे धाम में आने के लिए प्रेरित हों। अब यहाँ पर एक अंतिम प्रश्न ये उठता है कि अब तक तो हम इन देवी देवताओं की पूजा करते थे, पर आज पता लगा कि कृष्ण भगवान है, अब कैसे भगवान की सेवा करें, कैसे देवताओं को छोड़ दें? बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत पाप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आंसर है कि सत्य सत्य है, और सत्य है यही है कि कृष्ण भगवान है। जिस दिन से ये ज्ञान हो जाता है उस दिन से उसे अप्लाई कर देना चाहिए। तो फिर प्रश्न हो सकता है, देखो अगर आज हमें पता चल गया है कि कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को कृष्ण भगवान को समझो और बाकी सारे देवी देवताओं को भगवान। साफ साफ देवी देवताओं के विषय में बताते हैं भगवद गीता में 9.23, प्लीज देखिएगा जरूर अपनी भगवद गीता में अध्याय 9 श्लोक नंबर 23। भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कान्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। ये अप्यन्य देवता भक्त, यानी कि अगर कोई लोग दूसरे देवताओं के भक्त हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, और बहुत ही श्रद्धा से, देखो आप कितनी श्रद्धा से पूजा करते हैं देवी देवताओं की, माता की जो नवरात्रे रखते हैं, इतनी श्रद्धा होती है, देख के ऐसा लगता है कि इतनी श्रद्धा तो हम कृष्ण भक्तों के हृदय में भी नहीं है कृष्ण के लिए। लेकिन भगवान साफ साफ कहते हैं अगर वो कितनी भी अच्छी श्रद्धा के साथ उन देवी देवताओं की पूजा करते, देखो भगवान के शब्दों को मैं बता रही हूँ, अभी तक ट्रांसलेशन भी नहीं किया। ये का मतलब होता है जो अप्यन मतलब भी देवता, अन्य मतलब दूसरे, और देवताओं का मतलब जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं, यजंते मतलब पूजा करते हैं, श्रद्धयान्विता पूरी श्रद्धा के साथ जो दूसरे देवी देवताओं के भक्ति करते हैं, तेपी माम एव कौन्तेय, तेपी मतलब वो भी, माम एव बेशक मेरी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यजन अविधि पूर्वकम, लेकिन वो भक्ति जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवतम में आया है यथा तरो मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत्कंद भुजोपशाखा। अगर आपको वृक्ष को सींचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मूल में, उसकी जड़ में पानी देना पड़ेगा, ना कि एक एक पत्ते को उठा के पानी देना पड़ेगा। इस तरह से पूरा वृक्ष सूख जाएगा, भले आप एक एक पत्ते पर पानी की बूंद डालते रहो, लेकिन उसके अगर जड़ में आप पानी नहीं देते हो तो आपका कार्य बिल्कुल सफल नहीं होगा। इसी तरह देवी देवता भगवान के अंश हैं, भगवान की कलाएं हैं, लेकिन भगवान स्वयं कृष्ण है। यदि कृष्ण की भक्ति हो जाती है, यदि हम जड़ में पानी देते हैं, तो सबको खुद ब खुद संतुष्टि हो जाती है। सारे पत्ते कभी बोलते हैं कि भाई मुझे तो पानी नहीं दिया, कभी नहीं बोलते हैं। देवता कभी नाराज नहीं होंगे अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो भी देवता हमें और भी आशीर्वाद देंगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न तो उठता है कि देवताओं और कृष्ण के साथ हम कैसे व्यवहार करें। देखिए बारंबार ये कहा गया है कि कृष्ण भगवान है और बाकी सब देवी देवता हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि देवी देवताओं को निग्लेक्ट करना चाहिए, उनको है ना उपहास करना चाहिए। महा रामायण में तो यहाँ तक कह दिया, शिव द्रोही मम भक्ति कहावा सो नर नारकी गति पावा। यदि हम देवताओं का द्रोह करते हैं, देवताओं का उपहास करते हैं या उनके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो भी हम नरक में चले जाएंगे। देवताओं की भक्ति और करना, मतलब देवताओं को भगवान नहीं समझना चाहिए, लेकिन उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उनकी सेवा इज देवता करनी चाहिए। मतलब उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भगवान है, जैसे अब कैसे उनके साथ व्यवहार करें। एक दृष्टांत पे, यानी एक एग्जाम्पल पे मैं ये खत्म करूंगी आज का लेक्चर। जैसे किसी लड़की की शादी होती है, वो एक नए घर में अपने ससुराल में आती है, तो उस ससुराल में बहुत सारे लोग होते हैं, उसकी है ना जेठानियां होती हैं, उसकी बहू, बहू की जो नंदे होती हैं वो होती हैं, देवर होते हैं, सास ससुर होते हैं, वो सब उस सबका आदर करती है, सबको प्रणाम करती है, लेकिन हृदय में किसको बिठाती है? हृदय में केवल अपने पति को बिठाती है। उसी तरह कृष्णम वंदे जगत पति, जो भगवान जो है ना, दीन बंधु जगत पति, संसार में समस्त प्राणियों के पति वही है, हृदय में बिठाने योग्य केवल कृष्ण है। बाकी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए, वो हमसे बहुत महान है, उनसे आशीर्वाद कर लेना है, तो ये नहीं कि मुझे बेटा मिल जाए, मुझे बेटी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए। उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जब जाएं तो सिर्फ ये बोलें कि हे देव, हे शिव जी, आप परम वैष्णव हो, आप मुझ पे कृपा करो ताकि मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकूं और कृष्ण की अच्छी भक्ति कर सकूं। यही देवताओं के पास जाने का उद्देश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।